नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मलेशिया के लोगों के बीच गहरे संबंधों पर बल दिया। कुआलालंपुर में कल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बातचीत करेंगे। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से भारतीय निर्यात पर शुल्क घटकर 18% हुआ। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ कृषि और एमएसएमई सहित कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिलों में 51 माओवादियों का आत्मसमर्पण। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का दावा, रूस ने यूक्रेन के 2 बिजली संयंत्रों सहित ऊर्जा केंद्रों पर हवाई हमले किए। और T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को और वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को हराया। मुंबई में मौजूदा चैंपियन भारत और अमेरिका का मैच जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर आज मलेशिया पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कुआलालंपुर में एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने भारत और मलेशिया के बीच आपसी और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के दिलों को जोड़ने वाला एक जीता जागता सेतु बताया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ अपनी पुरानी मित्रता का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया ने वर्ष 2024 में अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है।
आवर रिलेशनशिप विद मलेशिया इज स्केलिंग न्यू हाइट्स ईच ईयर। In 2024, during the visit of Prime Minister Anwar Ibrahim to New Delhi, we elevated our ties to a comprehensive strategic partnership. Today, we walk hand in hand as partners towards progress and prosperity.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मलेशिया में 100 से अधिक भारतीय आईटी कंपनियां काम कर रही हैं, जिससे हजारों नौकरियां सृजित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई शीघ्र ही मलेशिया में काम करना शुरू कर देगी।
ओवर 100 इंडियन आईटी कंपनीज ऑपरेट इन मलेशिया जनरेटिंग थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। द मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल इज पेविंग न्यू पाथवेज for our digital collaboration. I'm happy to share with you that India's UPI will come to Malaysia soon.
हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी कल मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में हुए बड़े बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है, रक्षा निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है और देश का फिनटेक इकोसिस्टम दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम्स में शामिल है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के लिए कई अहम घोषणाएं भी की। उन्होंने बताया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की सुविधा अब छठी पीढ़ी तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही भारत में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी और मलेशिया में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का पहला दिन सकारात्मक और भविष्य की ओर देखने वाले संदेश के साथ संपन्न हुआ। दौरे के दूसरे दिन प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता और द्विपक्षीय बैठकें होंगी, जिनमें व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, कुआलालंपुर।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय निर्यातों के लिए भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के अंतर्गत 50% पारस्परिक शुल्क को अब घटाकर 18% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ कृषि और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली में आज भारत अमेरिका के संयुक्त बयान पर श्री गोयल ने कहा कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम सहित पड़ोसी देशों की तुलना में भारत का शुल्क कम है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब मात्र 18% लगेगी। और 18% जितने देश हैं जिनके साथ हमारा पर्दा रहती है, उन सभी देशों से कम है और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे।
समझौते को निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत में पर्याप्त मात्रा में उत्पादित कृषि और दुग्ध उत्पादों को शुल्क रियायतों से बाहर रखा गया है। इनमें मक्का, गेहूं, चावल, चीनी, सोयाबीन और मुर्गी पालन शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि भारत अमरीका व्यापार समझौते में किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। वे आज कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला मैदान में आयोजित 3 दिवसीय 41वें पशु मेले के दूसरे दिन पशुपालकों से बातचीत कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि भारत अमरीका व्यापार समझौते से वस्त्रों, परिधानों और तैयार उत्पादों के लिए 118 अरब डॉलर का वैश्विक आयात बाजार खुल गया है। इससे वस्त्र निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्रालय ने व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के बीच वस्त्र व्यापार संबंधों को मजबूत करने में प्रमुख प्रोत्साहन बताया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र से राष्ट्रव्यापी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब देश दालों का वैश्विक निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बैठक के दौरान दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें प्रमुख घटकों में क्लस्टर आधारित उत्पादन मॉडल, बीज गांव, देश भर में 1000 दाल मिलों की स्थापना शामिल है।
तो अगर क्लस्टर में कोई दाल मिल लगाना चाहेगा तो दाल मिल लगाने के लिए भी 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार देगी इस मिशन के अंतर्गत। भाई के भाई दाल बने और बिक जाए और किसान को ठीक कीमत मिल जाए। इस बार 1000 दाल मिल खोलेंगे और 1000 में से 55 दाल मिल मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी।
देश भर के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता आवश्यक है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख अवसंरचना कार्यों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में जम्मू कश्मीर में निवेश, उद्योग, खेल और अवसंरचना में हुई अभूतपूर्व वृद्धि को और तेज करना तथा जम्मू कश्मीर को और अधिक विकसित बनाना हमारी प्राथमिकता है। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृहमंत्री बृहस्पतिवार देर रात जम्मू पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गुरनाम और बोबिया में सीमा सुरक्षा बल की अग्रिम चौकियों का दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंच गए हैं। श्री शाह राज्य में आंतरिक सुरक्षा स्थिति और वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गृहमंत्री कल रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल के बीजापुर और सुकमा जिलों में आज 51 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन माओवादियों पर 1,61,00,000 रुपए का इनाम था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि माओवादियों ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज 30 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 20 महिलाएं शामिल हैं। इन माओवादियों पर कुल 85 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं राज्य के सुकमा जिले में 21 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन पर 76 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी, जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान और CRPF के DIG आनंद सिंह राजपुरोहित के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस दौरान इन माओवादियों ने AK-47, SLR और बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सहित अन्य ऑटोमेटिक हथियार भी सौंपे। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के तहत प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपए की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
और अब केंद्रीय बजट से संबंधित खबरों के साथ हैं मनोज।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कर्नाटक को केंद्रीय बजट में रेल परियोजनाओं के लिए 7,748 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। ये धनराशि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय के आवंटन से 9 गुना अधिक है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि केंद्रीय बजट जनहितैषी दृष्टिकोण से तैयार किया गया है और ये राष्ट्र की आकांक्षाओं को दर्शाता है। आज आंध्र प्रदेश में उन्होंने कहा कि बजट में विनिर्माण, सेवाएं, रक्षा, कृषि और लॉजिस्टिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है जो सतत विकास और रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने कहा है कि केंद्रीय बजट में 2047 तक के भारत के विकास के रोड मैप को ध्यान में रखा गया है और एक विकसित भारत की मजबूत नींव रखी गई है। पणजी में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने विश्वास व्यक्त किया कि गोवा को बजट के प्रावधानों से लाभ होगा, विशेष रूप से पर्यटन, समुद्री खाद्य निर्यात और कृषि क्षेत्र में। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाला भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी चर्चाओं को वास्तविक परिणामों में बदलने पर केंद्रित होगा। इससे नागरिकों, विशेष रूप से विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के नागरिकों को लाभ होगा। डिजिटल इंडिया, हमारे विशेषज्ञों से पूछें विषय पर इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन तकनीकी विमर्श से आगे बढ़कर जन केंद्रित समाधानों पर केंद्रित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारत की ये प्रगति अन्य देशों को संपूर्ण समाधान प्रदान कर सकती है। उन्होंने आज बेंगलुरु में क्वालकॉम निर्मित 2 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ संरक्षण नीति में संशोधन की आवश्यकता है। वे आज अलवर में आयोजित बाघ अभयारण्यों के फील्ड निदेशकों और मुख्य वन्यजीव संरक्षकों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित अंतर्राष्ट्रीय बाघ गठबंधन में अब तक 24 देश शामिल हो चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों पर रात में बड़े हवाई हमले किए। इन हमलों में बिजली उत्पादन और वितरण प्रणाली को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में 400 से अधिक ड्रोन और 40 अलग अलग तरह की मिसाइलें शामिल थीं। इनके निशाने पर देश भर में स्थित पावर ग्रिड, उत्पादन सुविधाएं और सब स्टेशन थे। रूस ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमल ने कहा है कि हमलों में 2 बिजली उत्पादन केंद्रों के साथ साथ बिजली वितरण की प्रमुख लाइनें और उप विद्युत केंद्र भी प्रभावित हुए हैं। ये हमले ऐसे समय हुए जब तापमान -14 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान था। पाकिस्तान में कल राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया धार्मिक केंद्र पर हुए आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। ये हमला शहजाद टाउन इलाके में स्थित तरलाई इमामबाड़ा में हुआ। इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मुंबई में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अमेरिका को 162 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 161 रन बनाए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 84 रन बनाए और शेडली वैन शाल्कविक ने 4 विकेट लिए। इससे पहले आज हुए मुकाबलों में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की 183 रन के लक्ष्य के जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 147 रन पर सिमट गई। वहीं पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेट से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मलेशिया के लोगों के बीच गहरे संबंधों पर बल दिया। कुआलालंपुर में कल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बातचीत करेंगे। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से भारतीय निर्यात पर शुल्क घटकर 18% हुआ। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ कृषि और एमएसएमई सहित कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिलों में 51 माओवादियों का आत्मसमर्पण। और मुंबई में T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अमेरिका को 162 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।